आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पाकिस्तानी कहानी विभाजित, जिसको लिखा है अहमद सगीर सिद्दीकी ने, अनुवादक है नबी अहमद और आवाज है अनुराग शर्मा की।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग में अपनी बात अपनी भाषा में।
मैं कोई 150 आदमियों को गोली मार चुका था। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। शरीफ होना और न्यायप्रिय होना काफी पीड़ादायक होता है। दुर्भाग्य से मुझमें ये दोनों विशेषताएं थी और ये सिलसिला शुरू भी इसीलिए हुआ था। बस अचानक ही कुछ करने का ख्याल मेरे अंदर आया। अमल की तरफ मैंने उस दिन ध्यान दिया जब मुझ पर यह भेद खुला कि इस गंदी गली में मौजूद गटर बंद क्यों हो जाता है। गटर बंद हो जाता था, कभी किसी के घर में पानी भरने लगता, कभी किसी के घर, कई बार मेरे अपने घर में भी यह हुआ। फिर मुझे पता लगा कि यह सारी मुसीबत उस जमादार की वजह से पैदा हो रही है जो पैसों की जरूरत के लिए कोई भी चीज नालियों में ठूंस देता था और फिर उसे निकालने के 100 रुपये तलब करता था। 100 रुपये, जरा सोचिए। मैंने उसे बुलाकर कहा, भाई आखिर ये क्या सबब है जो नालियां बंद हो जाती हैं? उसने कहा, बादशाह मुझे क्या पता, कचरा जमा हो जाता है। मैंने कहा, पता नहीं ये सुअरपन किसका है। उसने कहा, बादशाह होगा किसी का, हम तो हर वक्त इधर होते नहीं हैं। ये सिलसिला रुका नहीं। मैंने कुछ और लोगों से भी बात की, सबने यही कहा कि यह हरकत उसी की है, मगर ये मानता नहीं है। और फिर हमारे पास कौन सा सबूत है जो इसके मुंह लगे, और जनाब उसकी इज्जत ही क्या है, उल्टे हम ही बेइज्जत हो जाएंगे। बात ठीक थी। बस तभी मैंने फैसला कर लिया कि उसे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर या पिस्तौल तो थी नहीं। उसका लाइसेंस शरीफ आदमियों को आसानी से मिलता भी नहीं है। पान फरोशों तक के पास मैंने पिस्तौल देखी है, लेकिन मेरे जैसे अफसर को नहीं मिल रही थी। लाइसेंस लेने में रिश्वत वगैरह का बहुत खर्चा था। फिर मैंने बिना लाइसेंस की पिस्तौल से काम चलाया। उस दिन जब मेरे घर की नाली बंद हुई, मैंने उसे खुलाने के तुरंत बाद जमादार को गोली मार दी। पहली हत्या के बाद तो मेरा दिमाग खुल गया। मेरी नजर में वो ऑटो ड्राइवर भी था जिसने एक बार मेरे पांव की तकलीफ का फायदा उठाकर सिर्फ थोड़ी सी दूरी तक मुझे ले जाने के लिए पूरे 40 रुपये वसूल किए थे। उसका मीटर था हवाई जहाज वाला। उस दिन मैंने देखा वो किसी सवारी से सौदेबाजी कर रहा था। मैंने पूछा तो सवारी ने कहा, साहब मुझे जल्दी है और ये सब्जी मंडी जा नहीं रहा, कहता है 50 रुपये होंगे। अरे मैं तो रोज जाता हूँ, 20-25 रुपये होता है। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया और उसे गोली मार दी। तीसरा आदमी मेरी नज़र में केमिस्ट था। मेरे मोहल्ले के बाजार में उसकी दुकान थी। ये आदमी हर दवा अपनी कीमत पर बेचता था और एतराज़ करने पर ढिठाई से कहता, लेना हो तो लो वरना कहीं और से खरीद लो। उसे पता था इधर उधर कोई दूसरी दुकान नहीं है। कुछ दवाएं जो बाजार से गायब थीं उन्हें तो वो चौगुने दामों पे ब्लैक में देता था। मैं मरीज आदमी हूँ, अब भला मेरे जैसे लोग स्वस्थ रह भी कैसे सकते हैं। मैंने झांक कर दुकान में देखा, वो किसी ग्राहक से दामों पर बहस कर रहा था। मैंने निशाना लेकर गोली चलाई और उसका सर उड़ा दिया। उस दिन का चौथा कत्ल कोई जानबूझकर नहीं हुआ। नज़दीक ही पोस्ट ऑफिस था, मुझे कुछ लिफाफे लेने थे। खिड़की पर बैठा क्लर्क एक अखबार पढ़ रहा था। मैं उसके सामने कोई 5 मिनट खड़ा रहा, तब उसने सिर उठाकर पूछा, हाँ। मैंने कहा, अखबार पढ़ चुके? उसने कहा, लेना क्या है? मैंने कहा, क्या तुम्हें यहाँ अखबार पढ़ने की तनख्वाह दी जाती है? उसने कहा, बकबक मत करो, लेना क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं। मेरी गोली ने उसे कुर्सी के नीचे लुढ़का दिया। उधर से बाजार की तरफ बढ़ा तो चायखाने के सामने खड़ी पुलिस मोबाइल नजर आई। चाय वाला कह रहा था, साहब जी ये तरीका अच्छा नहीं है, आप लोग दिन भर इधर आकर खड़े रहते हो, चाय पीते हो और पैसे भी नहीं देते। उसके सामने खड़ा ASI उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। पुलिस का नाम सुनकर सभी कानों को हाथ लगाते हैं। लिखा होता है, पुलिस का काम है मदद आपकी। ये स्लोगन बिल्कुल गलत था, कहना चाहिए था, पुलिस का काम है मरम्मत आपकी। मैंने सोचा, ठीक करने की शुरुआत कहीं से तो होनी ही चाहिए। मैंने उस एएसआई को मौके पर ही गोली मार दी और चला गया। 5 कत्ल एक दिन में करने के बाद मैं उस रात अच्छी तरह सो पाया। मन ही मन खुश हो रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। मैं इस काम को जारी रखना चाहता था। समाज की गंदगी एक एक करके खत्म होती गई। मैंने एक भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी को गोली मारी। उसके बाद मैंने एक डॉक्टर को जहन्नुम रसीद किया और उस मंत्री की तलाश में चल दिया जिसकी आज्ञा पर मोहल्ले के पार्क पर गैरकानूनी कब्जा कराया गया था। ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे गोली मारना बहुत ज़रूरी था। समाज के दुश्मनों का सफाया करना आसान नहीं है। हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था इस संदर्भ में किसी भी काम की नहीं। न तो कोई उनके खिलाफ गवाही देता है, न कोई सामने आता है। फिर उनका सफाया कैसे हो? पुलिस उनसे मिली होती है, फिर उनका कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है? इसका बस यही एक तरीका था जो मैंने अपनाया था। महीने के अंत में मैंने सोचा तो पता लगा कि मैं 150 लोगों को गोली मार चुका हूँ। खुश होकर मैं अपने घर से बाहर निकला और मेरी खुशी एकदम से काफूर हो गई। मैंने अपनी आंखें दोनों हाथों से मली और गौर से देखा। हाँ, ये तो वही जमादार था जिसे मैंने गोली मार दी थी। वो अपनी साइकिल पर सवार चंद बांस लटकाए मज़े से जा रहा था। ये नहीं हो सकता, कोई और होगा। मैं चलता हुआ चौराहे पर जा पहुंचा। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसे मैंने गोली मार दी थी मज़े से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। हाँ, ये तो वही है। मैंने उस केमिस्ट की दुकान के अंदर झांका जिसके मालिक को मैं गोली मार चुका था। वही, हाँ वही, काउंटर पर खड़ा था अपनी काली दाढ़ी और सफ़ेद टोपी के साथ। हे ईश्वर, मुझे चक्कर सा आने लगा। तो क्या ये बात सच है कि वो तमाम बाकी लोग भी जिंदा होंगे? मैं उस पोस्ट ऑफिस की तरफ गया जहाँ के क्लर्क को मैंने दुनिया से रवाना किया था। वह क्लर्क खिड़की के सामने अखबार फैलाए पढ़ने में लगा हुआ था। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। मैं उसी जगह रुक गया और सोचने लगा कि क्या हो सकता है। मुझे अपनी बेबसी बहुत पीड़ादायक लगी, इतनी कि मुझे लगा मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मैं किसी तरह जिंदा रह सकता हूं इन सबके दरमियान? एक ही सूरत है, करीब से आवाज आई, इन्हीं की तरह हो जाओ। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि तुम भी मर जाओ। सही कहा, मेरे मुंह से निकला। मैंने अपना पिस्तौल अपनी कनपट्टी से लगाया और बड़बड़ाया। मैं इन्हें मार भी नहीं सकता और इनके साथ रह भी नहीं सकता, इसलिए मुझे मर ही जाना चाहिए। फिर मैंने ट्रिगर दबा दिया और मर गया। आश्चर्य, वे तमाम लोग जिन्हें मैंने मार दिया था सब के सब जिंदा थे और अपने कामों में लगे हुए थे। उसी तरह मैंने देखा कि मैं भी जिंदा हूं और अपने काम में लगा हुआ हूं, लेकिन ये राज सिर्फ मुझे मालूम है कि वास्तव में मैं जिंदा नहीं, एक अरसा हो गया है मुझे मरे हुए।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।